Om Shanti. A very warm welcome to today's session. Shareer ka vyayam to kar liya aapne, chusti aa gayi. Ab kuch man ke liye karte hain. Raj Yoga meditation jo ki hum man ke liye karte hain. Aur ise hamare beech lekar aa rahi hain hamari aadarniya Brahma Kumari Lata Didi. Aap inse rubaru to ho chuke hain, lekin ek chota sa inka संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी. लता दीदी एक गतिशील अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक, प्रेरक, वक्ता यानी मोटिवेशनल स्पीकर और सलाहकार है यानी कि काउंसलर. वे भारत और विदेशों में अपनी दिव्य सेवाएं दे रही हैं, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशियस, लैटिन अमेरिका आदि. वर्तमान में पिछले 24 वर्षों से दिल्ली के देरावाल नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग शिक्षिका के रूप से कार्यरत हैं. आपने मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूलों में करीबन 100 से अधिक सेमिनार आयोजित किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखती हैं. कुछ संगठन जैसे साइपेम, टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद, दिल्ली पुलिस उत्तर विभाग, बजाज एलियंस इंश्योरेंस, दिल्ली जल बोर्ड आदि बहुत से संगठन हैं जिनमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं. विशेष अपने आपने बच्चों और युवाओं के जीवन में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए कई समर वेकेशन कैंप्स का भी आयोजन किया है. और ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर माउंट आबू, जहां अभी आप हैं, इसके यूथ फोरम में भी, इंटरनेशनल यूथ फोरम जो कि माउंट आबू में है, इसमें बहुत एक्टिव रहते हुए आप स्पिरिचुअल वैल्यूज के माध्यम से युवाओं में विशेषता जोश भरने के निमित्त है. अपनी मधुर सहज वाणी, ध्यान संबंधी टिप्पणियों में आप हमें अपने भीतर की गहराई में उस स्थान की ओर मार्गदर्शन करती हैं जहां व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति, शांति और सद्भाव का अनुभव कर सकता है. दीदी, हम आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद भी करते हैं.
ओम शांति. तैयार हैं सभी? एक ऐसी यात्रा जो हमारी अपनी है, चले तो हम बहुत समय से हैं और बहुत जगह चले हैं, लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं उस तरफ चलने के लिए हम अपने आप को ये कह देते हैं टाइम नहीं है. या अपनी और क्या चलना, अपने को तो जानते ही हैं हम, कुछ और बताओ, कुछ अलग हटकर. सारा जीवन हमने बाहर की चीज़ों को जानने की, इकट्ठे करने की और परखने की कोशिश करी, लेकिन आज की ये जो यात्रा हम करेंगे, ये यात्रा हमारी अपने अंदर से प्रारंभ होने वाली है. तो क्यों ना इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले एक मिनट के लिए आईज क्लोज करके अपने आप से मिलने की कोशिश करें, अपना सारा ध्यान अंतर शक्ति, उस शक्ति जिसको आज तक हम अलग अलग नाम रूप से याद करते आए और उसी को ही मैं मानते आए, आज उस शक्ति से मेरा मिलन होने जा रहा है. स्माइल आ जाए फेस पर कि आज कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज मैं अपने लिए खुद इम्पॉर्टेंट हूँ और ये इम्पॉर्टेंस मुझे आज के सेशन में मिलनी भी है और उस खोज को मुझे अपना बनाना भी है. जो भी सुप्रीम पावर है, जो भी परम सत्ता जिसके प्रति भी मन में भावना है, मन में एक ही संकल्प रखें, आज उनकी स्पेशल कृपा दृष्टि इस सत्य को जानने में मुझे मदद करने वाली है और ये मिलन मेरा मेरे लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आईज ओपन कर लीजिए। हम इस राजयोग के सेशन में तीन बातें ध्यान रखते हैं। सबसे पहला है साधक, दूसरा होता है साध्य और तीसरी होती है साधना। इन आने वाले तीन दिनों में आप इन तीनों से मिलेंगे। साधक का मतलब जो मेडिटेट करना चाह रहा है या कर रहा है। साध्य का मतलब जिनसे हमें जुड़ना है, जो हमारा टारगेट है, हमारा एम है, जिससे हम जुड़कर अपने आप को एम्पावर कर पाते हैं। और साधक और साध्य के कनेक्शन में जो प्रोसेस चलता है उसको कहते हैं साधना, जिसको मेडिटेशन, योग, ध्यान और पतंजलि के आठों नियम के अनुसार अलग अलग रीति बताए गए हैं। आज हम अपने साधक को जानेंगे। साधक को जानने के लिए सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ। आज हम किसी से भी पूछते हैं ये प्रश्न, ये पहेली बहुत छोटी सी पहेली है, लेकिन हम औरों से पूछ लेते हैं, आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको देखा हुआ तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम कभी अपने आप से नहीं ये प्रश्न कर पाते हैं, लेकिन आज हमको बहुत सुंदर मौका मिल रहा है अपने आप को ये पहेली सॉल्व करने के लिए देने का कि मैं कौन हूँ। अब जब भी हम अपने अपने ऊपर ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे हमारे परिचय की बातें सामने आती हैं। या तो हम अपना जब भी किसी के पूछने पर अपने बारे में बताना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम मिस्टर सो एंड सो अपना नाम बता देते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि हम पैदा होते ही तो अपना नाम लेकर नहीं आए थे। हम सभी पैदा हुए तो हमें घर वालों ने चिंटू मिंटू, सोनू मोनू, छोटू मोटू कुछ अलग अलग नाम से बुलाया था। तब तो हमें पता भी नहीं था ये हमारा नाम भी होने वाला है। विधिवत नामकरण हुआ उसके बाद नाम मिला। तो जब हम आए थे तब हम कौन थे हमें नहीं मालूम है। उसके बाद अगर फिर पूछा जाए, नहीं हमने आपका नाम नहीं पूछा, हमने पूछा आप कौन हैं, तो फिर कह देता है आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, या जो भी अपना जेंडर है वो बता देते हैं। लेकिन वो भी एक शरीर का अस्तित्व है, शरीर के पहनावे के अनुसार कॉस्ट्यूम का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन इससे अलग हटकर भी क्या हम कुछ हैं ये भी जानने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न दोबारा पूछने पर फिर कोई अपना योग्यताएं, अपनी क्वालिटीज बता देता है। जो भी क्वालिटीज, किसी में बड़ा हैप्पी नेचर है, किसी में पेशेंस बहुत है, तो उस क्वालिटी को यूज करता हुआ अपना परिचय हर कोई व्यक्ति देता है और उसी को ही वो मैं कौन समझकर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ये प्रश्न उठाया जाए, नहीं भाई साहब हमने आपसे आपकी योग्यताएं नहीं पूछी, हमने पूछे आप कौन हैं, तो फिर वो अपना पोजीशन बता देता है, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेशन, जैसे अभी सबका परिचय देते समय मोस्टली परिचय में यही चीज दी जाती है, आप क्या करते हैं, आप क्या, आपकी योग्यताएं हैं, आपने क्या क्या अचीव किया हुआ है, इसी को आज हमने अपना परिचय मान लिया है। और इसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन सेम क्रिएट हुआ तो फिर एट लास्ट हमारे पास हमारी डिक्शनरी में कुछ यही रह जाता है कि मेरी नेशनैलिटी क्या है, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, जो भी है, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने प्रश्न पूछने के बाद अगर आपसे कहा जाए आप कौन हैं तो आप क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे? आपने नाम बता दिया, काम बता दिया, जेंडर बता दिया, नेशनैलिटी बता दी, क्वालिटी बता दी, सब कुछ बता दिया। मैंने एक बार ऐसे ही एक सेशन में पूछा था आप कौन हैं, जब ये सब बातें पता कर ली उसके बाद भी मैंने सेम प्रश्न पूछा आप कौन हैं, तो आप जानते हैं सामने वाले ने क्या आंसर दिया होगा, कोई गैस कर सकता है? इतना कुछ बताने के बाद, मैं एक आत्मा हूँ, वेरी गुड, और कुछ? इतना कुछ बताने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने कहा मैं जो भी हूँ आपको क्या मतलब, एग्जैक्टली सब कुछ तो बता दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब आपको क्या मतलब। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं ग्रुप में जो ये कहते हैं, अच्छा आप ही बता दो हम कौन हैं। और ये एक सही जिज्ञासु का आंसर होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद जी का, हम सब जानते हैं उनको। रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे और उनका बाल्यकाल का नाम नरेंद्र था। बहुत ही साधना करते थे, अपने गुरु के जो जो शिक्षाएं मिलती थी उसको धारण करते थे। एक बार अचानक उनको अपने अंदर की ऐसी खोज अंदर से उत्पन्न हुई, जो वो अर्धरात्रि के समय अपने गुरु जी की कुटिया में पहुंचे और वहां जाकर नॉक करने लग गए। गुरु जी समाधि में बैठे थे, उन्होंने अंदर से ही जवाब दिया, कौन है दरवाजे पर? नरेंद्र कुछ भी नहीं बोले, थोड़ी देर वेट किया, फिर से दरवाजा खटखटाया। गुरु जी ने फिर से पूछा, मैं पूछ रहा हूं कौन है दरवाजे पर? उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। दोबारा नॉक किया, आखिर गुरु जी उठे और दरवाजा खोला, कहा नरेंद्र तुम थे, मैं कितनी बार पूछ रहा हूं कौन है दरवाजे पर, बोले क्यों नहीं? बोला गुरु जी यही तो जानने आया हूं, मुझे मालूम है मैं नरेंद्र हूं, मुझे मालूम है मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मालूम है मैं एक पुरुष हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक उत्कंठा है ये जानने की कि मैं कौन हूं। और ये छोटी सी पहेली ने आज उनको क्या बना दिया? स्वामी विवेकानंद बना दिया। आज वो ही नहीं जानते वो कौन है, हम सब भी जानते हैं वो कौन है। तो खुद की जानकारी बहुत सारी जानकारी से हमें कनेक्ट करती है। और ये है मैं कौन की पहेली, जिसको हम जितना समझते जाएंगे उतना हम अपने आप से मिलते जाएंगे। और अपने आप से मिलने की बात ही यही है कि हम ये जान पाएं कि मैं अपने आप को जो आज तक मानती आई थी क्या वो सत्य था, आज तक जो मैं अपना परिचय देखती आई थी क्या वो सत्य था। क्योंकि पहचान में तो वही दिखाई पड़ता है, जिससे भी हम मिलते हैं हमारी आत्मा को थोड़े कोई कुछ देख सकता है। हर कोई नाम काम देखता है, मैं बोलूं मैं बहुत सारे काम करती हूँ, कहते करके दिखाओ ना, बोलते तो सभी हैं, तो करते हुए को देखा जाता है। तो वास्तव में उस सत्य को जानने की क्यों जरूरत है, और सत्य क्या है, और क्या हम जो आज तक अपना परिचय का बोझ लेकर घूम रहे थे क्या वही सत्य था, या इससे अलग हटकर मेरी कोई पहचान भी है? तो आज वो पहचान आध्यात्मिकता के द्वारा हमें बहुत सहज रीति मिलती है। जैसे आज हम अलग अलग ब्रांड्स की कार चलाते हैं, मेरे पास कौन सी कार है, क्या माइलेज है, क्या उसका आगे जो भी फीचर्स है, हमको सब कुछ मालूम पड़ता है। लेकिन कार की वैल्यू कब है? अच्छी से अच्छी कार मेरे पास रखी हुई है, लेकिन उस कार की वैल्यू तब है जब मुझे वो गाड़ी चलानी आती है, या मेरे पास ड्राइवर है, या मैं ड्राइवर अफोर्ड कर सकती हूँ। नहीं तो कार खड़ी है, मैं फिर भी पैदल घूम रही हूँ, और फिर मैं कहती नहीं नहीं मेरे पास बहुत बड़ी कार है, तो कहते फिर आप ऐसे क्यों चल रहे हैं। तो कार और ड्राइवर का जो डिफरेंस है, एक्चुअली वो डिफरेंस हमारी बॉडी और सोल का है। जैसे ड्राइवर कार को हैंडल करता है, उसके पास बहुत सी क्लच ब्रेक स्टेयरिंग सब कुछ है, और उस अकॉर्डिंग उसको जहां जैसे चलाना होता है उस अनुसार वो उसको चलाता है। लेकिन चलाता कैसे है ये किस पर डिपेंड करता है? कार पर नहीं, ड्राइवर पर डिपेंड करता है। ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो कार बहुत अच्छी चला लेगा, चाहे कार खटारा भी हो, पुरानी भी हो। लेकिन अगर ड्राइवर ही इतना मंझा हुआ नहीं है तो कितनी अच्छी ब्रांड न्यू कार भी उसके हाथ में दे दे, ठोक देगा। तो ये कारण क्या होता है? कारण यही है, जैसे गाड़ी और ड्राइवर का अंतर है, इस अनुसार हम बच्चे, हम लोग जो भी अपना कार्य करते हैं, उस कार्य में भी हम क्यों कभी किसी से भिड़ जाते हैं, कभी किसी से टकरा जाते हैं, कोई ऐसी मनमुटाव की बातें हो जाती हैं, कारण क्या होता है? ड्राइवर बीमार होता है। इसीलिए आज क्या कहते हैं, कई बार टकरा कर फिर क्या कहते हैं, बुरा मत मानना आज थोड़ा मूड ही ऐसा है, सुबह से बात ही ऐसी हो रही है, पता नहीं जहां जा रहा हूं ना वहां काम ही ऐसा हो रहा है। तो ड्राइवर फील करता है कि मैं ऊपर से कुछ नहीं करना चाहता लेकिन मैं अंदर से परेशान हूं। ऐसे ही गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी का दोष नहीं है, लेकिन क्योंकि ड्राइवर कमजोर है। और ड्राइवर कमजोर क्यों होता है इसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि ड्राइवर की कमजोरी का अर्थ ही क्या है, ड्राइवर को प्रॉपर जो अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम एक लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं, उसके बाद गाड़ी भी कह देती है मैं गर्म हो गई हूँ, थोड़ी देर मुझे ऑफ कर दो। ड्राइवर भी कह देता है नींद आ रही है, अब अगर चलाए ना ठोक दूंगा कहीं। इसका मतलब डिमांड तो दोनों तरफ से आ रही है, लेकिन हम सुनते किसकी हैं? सुनते किसकी हैं? गाड़ी की तो सुन लेते हैं, अपनी नहीं सुनते। और जब अपने पर बात आती है तो हम क्या कहते हैं, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। अपने को इम्पोर्टेंस ना देकर हम कार्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके कारण हम अधीन होकर चलते हैं। फिर एक समय आता है, जो बहन सुना रहे थे ना एक्सरसाइज कराते समय, बीपी शुगर ये सब होता है, ये सब सिम्टम्स है हमारे, ये हमारी गाड़ी जवाब देना शुरू करती है, धीरे धीरे बता रही है कि ड्राइवर को प्रॉपर ना फूड मिल रहा है ना ही रेस्ट मिल रहा है, इसलिए वो गाड़ी के भी ये सारे फंक्शंस शो करती जाती है। तो अब अगर ड्राइवर बीमार होगा तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। आज हम क्यों कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहती थी, मेरे मुंह से बोलिए बोलिए निकल गया, इसका मतलब ब्रेक फेल हो गया है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं ड्राइवर को ब्रेक दबाना नहीं आता, लेकिन अब इतना दबा चुके हैं हम जो अब वो फेल हो चुका है। तो फिर वो ड्राइवर अगर बीमार होगा, नेचुरल है वो धीरे धीरे गाड़ी को भी जो प्रॉपर यूज करना चाहिए वो नहीं कर सकेगा, उसका कमांड यूज नहीं करेगा। और अगर ड्राइवर स्वस्थ होगा, शक्तिशाली होगा, तो जरूर है अपनी जो जर्नी है उसको भी बहुत सुंदर रीति वो चलाएगा भी और प्रॉपर डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचा भी देगा। लेकिन इसमें मुख्य बात आती है, हम ड्राइवर और गाड़ी को जैसे अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही हम अगर मैं कौन की इस जर्नी को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो हम इस शरीर को जिस भी प्रकार से आज तक समझते या सुनते आए, तो इतने रीति तो जानते ही हैं शरीर क्या है, हड्डी मांस का पुतला है, पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, इन पांचों तत्वों से ये शरीर तैयार हुआ है। लेकिन ये पांच तत्व को एक बीकर में डाल के घोल देने से नहीं बन गया, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, इसका मतलब क्या होता है कि एक एक तत्व की इस शरीर को चलाने के लिए जरूरत है। आपको सारा दिन इस बंद कमरे में बैठाया जाए, आप कहेंगे कोई बाहर का प्रोग्राम नहीं बनाया गया, थोड़ा तो खुली हवा में चलो, आपको आकाश भी चाहिए। और सारा समय खुले पे नहीं रह सकते, आपको अंदर भी आना चाहोगे, आपको पानी भी चाहिए, तो हवा भी चाहिए, तो अग्नि भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये पांचों तत्व इस बॉडी को सरवाइव करने के लिए हमें चाहिए, जिसको हम शरीर कहते हैं। लेकिन इस शरीर में, इस जीव में जब आत्मा एंटर कर जाती है, यानी ये जो गाड़ी है इसमें जब ड्राइवर एंटर कर जाता है, तो ये चलने लायक बन जाती है। यानी जीव जमा आत्मा इक्वल्स टू जीवात्मा, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन प्लस बीइंग इक्वल्स टू ह्यूमन बीइंग। आज हम कह तो देते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन एक्चुअली हम ह्यूमन डूइंग बन गए हैं, बीइंग को तो पता ही नहीं है हमें कौन है, हम क्या करते हैं। आज हर एक व्यक्ति जो कर रहा है वो पहचान रहा है, और कर भी क्या रहा है उसको ये भी नहीं मालूम है, कर भी वो जरूरत के अनुसार रहा है, इसलिए मैनेजमेंट सारा बिगड़ा हुआ है। ये सेशन कराने का मतलब ही यही है, हम अपनी अथॉरिटी को समझ सके, अथॉरिटी को समझकर उसको प्रॉपर यूज करेंगे, तो वो अथॉरिटी हमारे सीक्वेंस को कैसे चलना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमारे लाइफस्टाइल को सेट करेगी। बहुत सुंदर, मैंने एक बारी एक सेशन ले रही थी कंपनी में, तो सभी लोग बहुत मायूस होकर बैठे हुए थे। मैंने सोचा बड़ा शायद सीरियस ज्ञान हो रहा है लगातार, तो थोड़ा सा जोक सुना देती हूँ, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक, मैंने कुछ हंसी की बात सुनाई। तो 50% लोग बहुत अच्छा एंजॉय करने लगे, 50% फिर भी मुंह लटका के बैठे हुए थे। मैंने फिर से एक और थोड़ा सा जोक सुनाया कि चलो थोड़ा हंसते, 70-80% लोग हंसे, लेकिन 20% फिर भी चुपचाप बैठे हुए थे। उसके बाद दोबारा मैंने कुछ सुनाया तो सारे हंसे, लेकिन एक व्यक्ति फिर भी नहीं हंसा। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपको कोई प्रॉब्लम है घर पे? मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, रिएक्ट ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला, आप इमेजिन नहीं करेंगे क्या आंसर दिया। उन्होंने कहा, मैं आज सुबह पार्क में हंस के आ चुका हूँ। इसका मतलब हमने हंसी को भी क्या बना दिया, ऐसा एक्सरसाइज, बस मेरा टाइम खत्म, अब मुझे नहीं हंसना। आप कितना ही हंसा लो, आप सब तो नहीं करेंगे ना ऐसा। तो रिएक्टिव रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है जब हम खुद से मिलने जा रहे हैं तो हमें अपने आप को रिस्पॉन्स देना है। सिर्फ कानों से सुने नहीं, साथ साथ बुद्धि तक ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। जैसे हम शरीर के बारे में समझ रहे हैं, इसी प्रकार हमें अपनी आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसी कॉन्शियंट एनर्जी है जो इस बॉडी को चलाती है, इसको एक्टिव रखती है, जो कहाँ रहती है, मस्तक के बीच में रहती है। आप सब ने देखा होगा, मंदिर से बाहर आते ही आपके मस्तक पर क्या लगा होता है? तिलक लगा होता है। मस्तक पर ही क्यों लगाते हैं? ठोड़ी पे, गाल पे, इधर उधर भी लगा सकते हैं, लेकिन मस्तक पर लगाना एक ललाट माना जाता है इसको, स्पिरिचुअलिटी के भाव से। और ये समय, ये स्थान एक ऐसा स्थान है, साइंटिफिकली कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ओवल शेप की बोन होती है जो यहाँ और यहाँ से सेंटर में होती है। ये एक प्लेस है जहाँ सोल रहती है, और वो ओवल शेप की बोन को हम लोग जब अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं तो उसमें से आत्माराम ढूंढते हैं। आप में से किसी को पता होगा, तो दैट इज नॉट द सोल, वो आत्माराम एक्चुअली जहाँ आत्मा रहती थी, आराम करती थी, वो रहने का स्थान था। वो एक बोन है जो हमें मिल जाती है, हम उसको विसर्जित करते हैं, वो एक प्लेस है आत्मा के रहने का। लेकिन आत्मा अलग है, जिसको इन नेत्रों से हम देख नहीं सकते। यहाँ ही आत्मा का रहना, हमारे मुख की शोभा भी, तिलक अगर सही जगह पर लगा हो तो वो शोभायमान होता है। थोड़ा भी किसी की बिंदी आगे पीछे लग जाए, हम देखते ही क्या करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। आज सबका क्या हाल हुआ पड़ा, सबके अंदर वाली बिंदी तो सर की पड़ी हुई है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसको सेट नहीं कर सकते, ऊपर से तो सेट करते हैं। अच्छा, कोई गड़बड़ हो जाती है तो भी हम कहाँ कहते हैं, पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। बट नेचुरली इधर नहीं मारते, इधर भी नहीं मारते, पीठ पे भी नहीं मारते, इधर ही, क्योंकि जो कर रहा है दोष उसको लगेगा, दोष उसको लगेगा। इसीलिए देखो, आप गाड़ी से गाड़ी टकरा जाती है तो एकदम उतर कर कौन आपस में रिएक्ट करते हैं? ड्राइवर। दोष किसको दिया जाता है? देख के नहीं चला सकता, ड्राइवर को, गाड़ी को कोई नहीं बोलता। तो यहाँ ड्राइवर बैठा है ना, यही बोलते हैं पता नहीं कहाँ चला गया था, एकदम यही लगता है। अच्छा, आप मंदिर से वापस आते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या करके आए हैं, तो क्या बोलते हैं? मैं तो बस थोड़ी देर मत्था टेकने गई थी। थोड़ी टेकने, घुटने टेकने, कोने टेकने कोई नहीं जाता, हर कोई मत्था टेकने जाता है। व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड मत्था टेकने गई थी? इट मीन्स यहाँ ये सोल है, उसको हम भगवान के आगे अर्पित करने गए थे, नतमस्तक करने गए थे। तो कुछ हम नेचुरली शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे कि ये मेरी खुद की फीलिंग है जो हम भगवान से कनेक्ट होकर आने के लिए शब्द बोल रहे हैं। तो आत्मा का निवास स्थान कोई हार्ट में नहीं है, आत्मा का निवास स्थान मस्तक में है। अगर हार्ट में आत्मा होती, सपोज ले लेते हैं, तो आप सोचिए, आज तो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, हो जाता है, फिर तो सोल भी चेंज हो जानी चाहिए। और आज कल तक गुस्सा करने वाले का किसी शांत से हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, कितना अच्छा चेंज हो गया। लेकिन कुछ नहीं होता, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी व्यक्ति का नेचर नहीं बदलता। हाँ, अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट में कहीं भी कुछ, थोड़ा भी जर्क कुछ लगता है, और ऑपरेटिव के लिए वहां पर कोई व्यक्ति लेकर जाया जाता है, तो सबसे पहले कह दिया जाता है, हमें नहीं मालूम इनकी याददाश्त आएगी या नहीं, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर की प्लेस है. हम किसी रोड दुर्घटना को भी देखते हैं, अगर ड्राइवर की सीट क्रश हो चुकी होती है तो कहते पता नहीं बाकियों का क्या हाल हुआ होगा. गाड़ी देखी है मैंने, अभी ड्राइवर नहीं देखा, लेकिन वो सीट को देखकर हम इमेजिन कर लेते हैं ये एक्सीडेंट कितना बुरा हुआ होगा. इसी तरह आत्मा का निवास स्थान यहाँ भ्रुकुटी में है. हम यहाँ अपने आप को एज अ स्टार विजुलाइज करते हैं और यहाँ ही जब आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कमांड पूरी बॉडी को चलाता है. अब आत्मा को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हर एक आत्मा जिससे भी हम बात कर रहे हैं उनको भी हमें किस रूप से देखना है. हम आज तक बाह्य रूप से देखकर ही एक दूसरे को जज करते हैं, ये काला, ये गोरा, ये छोटा है, ये बड़ा है. लेकिन हम सब यूनिक हैं, लेकिन हम सब एक जैसे हैं. बड़ा सुंदर, मैं छोटी थी स्कूल में प्रेयर गाते थे, आई डोंट नो आपने सुना हो, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है. मैं सोचती थी सब में ओम कैसे समाया हो सकता है, लेकिन अब ये समझ में आता है ओम शब्द का मतलब ही, हम लोग ओम शांति बोलते हैं यहाँ पर, तो ओम शब्द का मतलब ही क्या है, आई एम पीसफुल सोल. तो ओम माना मैं आत्मा, शांति माना शांत हूँ. तो जब मेरे में भी ओम, तुम में भी ओम, सब में ओम है, यानी हम सब सोल्स हैं, तो हम एक दूसरे से प्रीत कर सकते हैं क्योंकि हम सब इक्वल हैं, हम सब वही पॉइंट ऑफ लाइट हैं, हम सब की आत्मा इक्वल एक जैसी है, कोई साइज में बड़ी छोटी नहीं. हाँ, ये शरीर का आउटपुट है जो हर एक का अलग अलग रीति से दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है. अब आत्मा एक जैसी है तो बिहेवियर सबके अलग अलग कैसे हैं? फिर है उसका यूसेज कैसा है हमारा, मैं यूज क्या कर रही हूँ. सबसे पहली बात मुझे ये जानना है कि मैं आत्मा, ये जो शरीर को ऑपरेट करने वाली ड्राइवर हूँ, तो मेरे हाथ में है मुझे कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब रेस देनी है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ नहीं. इसी तरह जैसे एक ड्राइवर को गाड़ी के फंक्शंस मिलते हैं मूव करने के लिए, ऐसे ही हमारी सोल को ये पांच कर्म इंद्रियों का ये रूप मिला हुआ है जिससे हम हर कर्म करते हैं और उसको उस अकॉर्डिंग फंक्शनली यूज करते हैं. अब मेरे को यूज करना है या नहीं करना है वो डिपेंड मेरे ऊपर करता है. कोई है शरीर को बहुत ही संभाल कर रखते, कुछ नहीं करते, और बैठे 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 वो शरीर और ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. फिर कहते मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं किया तभी तो जाम हो गया. क्योंकि शरीर एक इंजन है, मशीनरी है, उसको जितना हम एक्टिव रखेंगे, एक टाइम बीइंग, बहुत एक्सेस भी नहीं, लेकिन कराने वाली कौन है, वो सोल है. जब हम हर कर्म करते, अपने आप को सोल आइडेंटिफाई करके कर्म करेंगे तो क्या होगा, कर्म इंद्रिया और मैं, हम आपस में एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखेंगे, डिटैच होंगे. गाड़ी पर स्क्रैच पड़ता है तो कोई ड्राइवर की बॉडी पे स्क्रैच नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उसको, क्योंकि वो कनेक्टेड है तो उसको फील होता है, यार मेरी इतनी अच्छी गाड़ी, देखो ना ऐसा हो गया. तो ऐसे ही शरीर पर कोई भी इफेक्ट आता है उसको, उसका अफेक्शन सोल फील करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कमजोर हो गई है. हम क्यों उसको मोटिवेट करते, कोई बात नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो सोल को मोटिवेट करते हैं तो शरीर का रिस्पॉन्स फिर अच्छा आना शुरू हो जाता है. सोल को हम और भी जानना चाहेंगे कि वो पांच कर्म इंद्रियों से कैसे कार्य करती हैं. ये पांचों कर्म इंद्रियां वास्तव में हमारी इनपुट लेने का तरीका है. हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम क्या स्मेल कर रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, ये पांचों कर्म इंद्रियों के द्वारा हमारी सोल को क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है. और जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो हम एक्यूमुलेट करते जाते हैं, फिर सिचुएशनली हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं. तो मेन बात हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि शरीर और आत्मा का अंतर है. आज तक जो मैं, मेरा, दो वर्ड हम सभी यूज करते आए हैं अपने लिए, मैं वर्ड भी अपने लिए और मेरा वर्ड भी अपने लिए. सारे दिन में ये दो वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन जब मैं हूं एक तो मैं दो वर्ड क्यों यूज कर रही हूं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार करता है कि मैं अलग हूं, मेरा अलग है। आप देखिए बॉडी के पार्ट्स के लिए हम मैं वर्ड यूज नहीं करते। मेरे सिर में दर्द है, मेरा हाथ बड़ा दुख रहा है, आज मेरे घुटने बड़े दर्द कर रहे हैं, है ना। बॉडी पार्ट्स के लिए, क्योंकि शरीर मुझसे अलग है इसलिए हम मेरा वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, उसमें मेरा बहुत खुश रहता नहीं बोलते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग ये लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ही है कि सोल आइडेंटिफाई कर रही है कि जो सोल की क्वालिटीज है वो सोल से रिलेटेड है, और जो भी हम कर्म करने के लिए, जो सेंस ऑर्गन्स अपने सारे बताए गए, हम वो इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो वो इंद्रियां हमारे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम मेरा कहकर उस पर अधिकार चलाते हैं। तभी तो अभी जैसे पहले आपने बोला ना कि मैं चाहती नहीं थी मेरा हाथ उठ गया, मैं चाहती नहीं थी मेरे मुंह से निकल गया, निकला आप ही के ही मुंह से है। आप इसको एडमायर भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है करने वाली कौन है, वो मैं हूं। तो चाहूं तो मैं इस मुख से गलत भी निकाल सकती हूं, और चाहूं तो मैं इस मुख से अच्छा भी निकाल सकती हूं। तो हु इज द ऑपरेटर, मैं ही हूं। तो हमें किसी और को कहने की क्या जरूरत। आज हम दूसरों से कहते हैं आप थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते, आप प्यार से बोल सकते हैं तो आप बोल लीजिए, नहीं बोल रहा वो तो उसका कमांड उसके ऊपर चलता है। अब कोई है जो बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, इधर उधर घुमाते बैठने वालों का भी सब कुछ हिल जाता है, और कोई है जो बहुत स्मूथ ड्राइविंग करते, कहते इनके साथ बड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो मेन बात है गाड़ी सबको मिली हुई है, चला कैसे रहे हैं वो मैं हूँ, चलाने वाली मैं हूँ, तो उसका पावर भी मेरे पास है, इसलिए मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती। लेकिन हमको आदत सी हो गई है ये कहकर अपने आप को एक्सक्यूज कर लेने की कि बड़ा शांत जल रहा था जब तक ये नहीं आया था, इसके आते ही सुबह से सोचा हुआ था आई एम पीसफुल, सारा पीस निकल गया इसके आते ही। नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी को मुझे ऑपरेट करना है। द सेंस ऑफ दिस चैप्टर इज क्या कि हमको ये समझ में आए। अब शरीर और आत्मा के अंतर को अगर हम जानें तो हमें ये समझना जरूरी है कि आत्मा को भले ही वो एक स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन हम इन नेत्रों से देख नहीं सकते, और जिस चीज को देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है। जैसे मेरी आवाज को आप देख नहीं सकते, लेकिन हम कल गीत सुन रहे थे, आज सुन रहे हैं, या कोई बात कर रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ी अच्छी है, बड़ी पतली है, बड़ी मोटी, आपने कोई साइज नहीं देखा उसका, लेकिन जैसा आपने सुना हुआ है या जैसे आपके कानों को कंफर्टेबल है उस अकॉर्डिंग आप उसको साइज बता रहे हैं। इसी तरह से हवा है, उसको हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं आज मत घूमने मत चलो, आज हवा चल ही नहीं रही है, है ना। आपने उसको रेस्ट करते हुए नहीं देखा या बैठे हुए भी नहीं देखा, लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ चीजें हिल नहीं रही है, पसीने आ रहे हैं, चिपचिपा लग रहा है, तो कहते हैं आज मत चलो, आज हवा चल नहीं रही, या आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो आपने कैसे देखा, आपने उसको महसूस किया। तो इसी तरह आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं आत्मा को, अभी शांत है, पक्का, बिल्कुल। और आत्मा को और किसी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, कोई और गलत हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूं मेरी आत्मा को मालूम है मेरी मुख रूपी इंद्री का मुझे यूज करना है, आप सुन रहे हैं, आपकी आत्मा को क्या मालूम है, आपको कान रूपी इंद्री का प्रयोग करना है, चल रहा है ना ये सब। तो सोल ही तो कर रही है ये कि मुझे कब रिएक्ट करना है, कब बोलना है, कब रिस्पॉन्स देना है, कब नहीं देना है। तो ये आत्मा निराकार होते हुए भी इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर ये करती है। इसी के कंपैरिजन में शरीर साकार ही है, दिखता है हमारे को, हम देख सकते हैं नेत्रों से। फिर आत्मा को अविनाशी कहते हैं क्योंकि जिसको देखा नहीं जा सकता उसको विनाश भी नहीं किया जा सकता। गीता में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्ले दंति आपो, न शोषयति मारुता। न पानी उसको गीला कर सकती है, न हवा सुखा सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर को तो हम सब देखते हैं, है ना, जलाया भी जाता है, पूरी विधि की जाती है, गीला भी होता है, सुखाते भी, सब कुछ होता है। तो इसका मतलब शरीर और आत्मा दोनों का ये महान अंतर है, एक विनाशी चीज है और एक अविनाशी चीज है। फिर आत्मा को अनादि भी कहा जाता है, अनादि माना अमर है वो, क्योंकि बहुत काल से चलती, एक जर्नी पर चलती जा रही है, खत्म तो हो ही नहीं रही वो। एक बॉडी चेंज कर रही है, दूसरी ले रही है, तीसरी ले रही है, 84 लाख योनी हम सब ने सुना हुआ है। तो इसका मतलब वो एक जर्नी पर है कंटिन्यू, वो नहीं मर रही है, वो तो अनादि काल से चली आ रही है। लेकिन शरीर जो है वो टेम्पररी है, आज है कल का क्या पता, हम ये शब्द बोल देते हैं, इसका मतलब अस्थाई चीज है वो। उसके बाद आत्मा को कॉन्शियस एनर्जी, कॉन्शियंट बोला जाता है, चैतन्यता है। आप देखिए गरम गरम पतीला पकड़ लो, कौन चीखता है? शरीर नहीं चीखता, कौन चीखता है? आत्मा कहती है। शरीर को गरम लगता है तो पता है, और वही कॉन्शियंट एनर्जी निकल जाए तो चिता पर भी कोई नहीं चीखता, आराम से जल रही है, कुछ नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ही क्या, हम ये समझ सकते हैं कि एक जड़ है, एक चैतन्य है, उस जड़ में जब चैतन्यता आती है तब वो कर्म हमारे सामने करना दिखाई देता है, कर्म होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। अब जब हम इस आत्मा और शरीर के अंतर को समझ गए कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अब आत्मा है क्या ना, उसको हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो राजयोग की साधना हम करें कैसे? भाई शरीर से तो मैं कह दूंगी हाथों को मोड़ के बैठे या इस उंगली को जोड़ के बैठे, सीधे बैठे, ऐसे करें, लेकिन आत्मा को कहां बिठाऊं जब देख ही नहीं सकते हम। तो आत्मा का भी सिस्टम अगर मुझे समझ में आ जाए तो हम राजयोग की जर्नी को बहुत सुंदर एंजॉय कर पाएंगे। आत्मा भी जैसे ये शरीर 5 तत्वों से कर्म करता है, ऐसे आत्मा के पास भी अपनी 3 फैकल्टीज है, आत्मा की जिसको कहते हैं 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। सबसे पहली आत्मा की इंद्री है जिसको कहते हैं मन। मन बहुत सुंदर चीज है, मन को कहते हैं थॉट पावर, यानी संकल्प शक्ति। मन संकल्प शक्ति का नाम है। दूसरे उसकी पावर बुद्धि है, बुद्धि जिसको कहते हैं निर्णय करने की पावर, जो डिसीजन लेती है। और तीसरा उसकी पावर है संस्कार, जो हमारे हैबिट्स बन जाती हैं, आदत बन जाती हैं। ये 3 फैकल्टीज के थ्रू आत्मा हमारे कर्म में आती है। हम जो भी कुछ करते हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे पूरा, मन बुद्धि संस्कार कैसे फंक्शन करते हैं सोल के। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है मन की, क्योंकि पहली फैकल्टी आत्मा की मन है। मन क्या है? मन विचार शक्ति का नाम है। विचार एक दिन में ढेर सारे उठते हैं, एक मिनट में भी बहुत सारे उठ जाते हैं। साइंटिफिकली तो बहुत कुछ प्रूव किया गया है, लेकिन इन विचार शक्ति को, क्या मन को हम मैनेज कर सकते हैं? आज हम सभी क्या कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल करने के कारण क्या होता है, मन का दबाव पड़ता है। हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें मन को मैनेज करना है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करना, बताना है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मन का अर्थ ही है थॉट पावर। सारे दिन में थॉट्स कितने उठते हैं, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको एक बहुत सुंदर बात बताती है, क्वालिटी ऑफ थॉट केवल 5 ही होते हैं। क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ थॉट है वो केवल 5 टाइप्स हैं। कौन से हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है नेगेटिव, जो आज की दुनिया में बहुत इजी है क्रिएट करना। कुछ भी हम इंफॉर्मेशन ऐसी देखते हैं, एकदम हमारे मन से निकलता है, हाय ये ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आज शनिवार है, आज बुधवार है, आज ही है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमने कैच कर रखी है, तो वही थॉट एकदम इमीडिएट क्रिएट होता है। दूसरा है व्यर्थ विचार, माना वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट मीन्स विच इज नॉट कंसर्न विद मी बट स्टिल वी आर थिंकिंग। लाइक मेरे पड़ोसी, मेन रोड पर उसका बंगला है और उसने बाहर से व्हाइट कलर का पेंट करा रखा है। मेन रोड, इतनी पब्लिक, इतना ट्रैफिक जाता है, हम बैठे बैठे बातें करते हैं, पागल है ये, व्हाइट वॉश करके बैठा, 2 दिन में देखना काला हो जाएगा इसका, इतना तो धुआं, इतना तो पॉलिश। अब मेरे सोचने से ना तो वो चेंज करने वाला है, ना ही मैं बेल बजा के कहने वाली हूं भाई साहब आप चेंज कर लो, आपका ये पॉल्यूशन के कारण काला हो जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं। अच्छा फिर हम पूछते क्यों सोच रहे थे ऐसे ही, मेरी सोच क्यों ना सोच, मतलब बताने पर भी उनको क्या लगता है, मेरी सोच है, मेरा अधिकार है, वेस्ट। उसके बाद आता है जरूरी विचार। जैसे आपको यहाँ आना था तो आप लोगों ने प्लान किया, टिकट कराई, आने के बारे में सोचा, पीछे से कैसे मैनेज होगा, तो ये सोच कौन सी सोच है? नेसेसरी थॉट्स है। ऐसा नहीं है सोच ही बुरी है, सोच बुरी नहीं होती है, लेकिन कौन सी सोच जरूरी है वो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और उसके बाद आता है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट, जो हम मोटिवेशनल थॉट्स के थ्रू लेते हैं, जो हम कुछ अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़कर, अच्छी अच्छी बातें सुनकर हम लेते हैं, और हमें बुद्धि आपको मिल जाएगा, पीपीटी दे देंगे। तो जो हम सोच कर, चिंतन करके क्रिएट करते हैं, एक अच्छे संग से लेते हैं, अच्छी किताबें पढ़ कर लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव थॉट। लेकिन ये चार थॉट तो आपने सुने हुए हैं, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी, ये तो कॉमन है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थॉट के बारे में बताती है, एंड दैट इज एलिवेटेड थॉट। एंड एलिवेटेड थॉट का मतलब होता है जो हमारी सोच से भी बहुत ऊंचा है, लेकिन बार 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 उसका जब हम अभ्यास करते हैं तो वो थॉट मेरा अपना बन जाता है। जैसे आपको ओम शांति शब्द बोल रहे हैं तो ये आपको एलिवेटेड थॉट दिया जा रहा है। आप जिस भी मूड में आए हैं, वेलकम, बट अब आप कौन सा मूड बना लो अपना, ओम शांति। आप जानते हैं ओम शांति वर्ड कैसे बना या क्या हुआ? बहुत समय पहले हम जब बड़े बुजुर्ग आपस में मिलते थे पार्क में या कहीं भी, तो हमेशा एक शब्द बोलते थे, जय श्री राम, कोई कहता था जय माता दी, कोई ओम साई राम, मतलब जो जिस भगवान को मानता था उसी से ही अपनी सुबह की शुरुआत करते थे जब एक दूसरे से मिलते थे। धीरे धीरे भगवान के नाम मिटते चले गए और प्रणाम नमस्ते ऐसे करके शुरू हो गया। फिर जब भी जो भी जिससे मैं मिलता था, प्रणाम नमस्ते इस शब्दों का प्रयोग करता था। और थोड़ा मॉडर्निज्म आ गया तो हेलो होने लग गया, एक दूसरे से मिले, हेलो कैसे हो, क्या हो। और आज का जमाना आ गया जो किसी से भी मिलते हैं क्या बोलते हैं, हाय, है ना। और हाय हाय हॉस्पिटल्स में सुनाई देता है ज्यादा तो। और आज हम सुबह सुबह एक दूसरे को क्या बोलते हैं, हाय। आप सोचिए वर्ड ही क्या है, और सुबह सुबह हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, हाय हाय वाली एनर्जी। तो यहाँ पर हमने ये सिस्टम रखा, हम अपने आप को क्यों ना एलिवेटेड थॉट दें। सुबह मिलते ही एक दूसरे को ओम शांति, इसका मतलब मैं खुद को भी याद दिला रही हूँ, आई एम पीसफुल सोल। सामने वाला तुरंत कहता है ओम शांति, थैंक यू आपने याद दिला दिया, मैं भी कौन हूँ, आई एम पीसफुल सोल। इसका मतलब ये एलिवेटेड थॉट, मैंने एक्सचेंज करी एनर्जी, तो हाई हाई वाली एनर्जी छोड़कर हम एक अच्छी एनर्जी क्रिएट भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, और अपने आप को उस रीति, उस एलिवेटेड स्टेज पर ले जा भी रहे हैं। और जब मैं उस स्टेज पर पहुंचूंगी, अब कोई भी स्टिमुलेंस आएगा तो मैं उसको बहुत इजीली हैंडल करूंगी, क्योंकि मैंने हाय हेलो की तरह नहीं बोला ओम शांति, मैंने समझा है मैं पीसफुल हूं, तो मैंने वो समझ कर एक्सेप्ट किया है। तो मन का काम है विचार क्रिएट करना, मन विचार शक्ति का नाम है। अब मुझे इनमें से कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, किस थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, जितना मैं जिस थॉट पर प्रैक्टिस करूंगी वो इजीली मेरे पास आएगा। कई कहते हैं हम चाहते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं मैं नेगेटिव ना सोचूं, लेकिन मेरे पास बार बार नेगेटिव ही क्रिएट होता है। चेक करिए हमारी इनपुट क्या हो रही है, क्या हम सारा दिन बैठकर क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं? अगर देख रहे होंगे तो क्या आएगा, आई एम पीसफुल सोल उसके सामने बैठ के तो बोलोगे नहीं आप, है ना। तो जरूर है हमारी इनपुट क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है, सस्पेंसिव जा रही है, तो हम दूसरे पर भी क्या सोचेंगे, इसी रीति से सोचेंगे। तो क्रिएटर तो हम है ना, क्रिएट तो हमें करना है। जब पावर मेरी है, चलाना मुझे है, तो मुझे कौन सा थॉट क्रिएट करना है ये डिसीजन में मेरा होना चाहिए। तो मन ने तो थॉट क्रिएट कर दिया, लेकिन अब जो सेकंड काम आता है वो क्या काम आता है, वो आता है बुद्धि के ऊपर। अब हमारी जो थॉट्स हैं वो आते कहां से हैं, क्रिएट तो कर रही हूं ना मैं, तो किसी बेस पर तो कर ही रही होंगी थॉट। अब कौन कौन से बेसिस पर मैं थॉट क्रिएट करती हूँ? सबसे पहला, जैसा बोला, इनपुट्स जो हम ले रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हमने कोई बातें इकट्ठी कर रखी हैं, उस बेस पर मेरे अंदर थॉट क्रिएट होता है। दूसरा जो थॉट क्रिएट होता है वो बिलीफ सिस्टम के आधार पर, जैसे हमें याद है कि किसी फ्लाइट को जाते हुए देखा, आज मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ताली बजा देना, बस बचपन में बोलते थे, मुझे याद है, वो बचपन की मेमोरी है। तो हम लोग पढ़ते ही बाहर बैठ के थे कि कोई फ्लाइट चली जाए, ताली बजा दे, बस आज तो मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब मान लो कोई कहते फ्लाइट देख लोगे ना, एग्जाम बड़ा बेकार होगा, ध्यान रखना, और दिख जाए फिर क्या होगा? जो फीड कर दिया बिलीफ सिस्टम, है ना, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो बस खराब हो गया। अब कोई चला जाए पहले, तब तक वेट करते, उसका कट जाए भले, मेरा ना कटे। आज सोचिए सर, कोई तो जाएगा ना रास्ते से, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम है। अब हम कहीं भी बिल्ली देखेंगे, हमारी बुद्धि में क्या आएगा? अरे काम ना खराब हो जाए, अभी नहीं, रुक जा। इसका मतलब ये थॉट मैंने ही तो इकट्ठे कर रखे हैं ना, कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर रखे हैं। इसके बाद क्या आता है, नेचुरल बिलीफ सिस्टम के आधार पर हमारा कुछ थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो कुछ पास्ट मेमोरीज होती है हमारी, भाई इस रास्ते से एक बार हमारी गाड़ी गई थी, वो ऐसा ऐसा हुआ था, इस रास्ते से नहीं जाना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो चार बार हो चुका, मैंने देखा है। या सैटरडे को ये काम करने से ना, हमारे घर में हमेशा ऐसा हुआ है, तो हमें ये करना ही नहीं है। तो ये कुछ पास्ट मेमोरी इतनी हिट करती है अंदर से, जो हमारे थॉट को बार बार उसी नेगेटिव दिशा में ले जाती है। तो कई बार वो भी कारण बनता है। एक को आप दोष नहीं दे सकते कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, इन सब का इनपुट्स होती है, जिसके कारण हमारे थॉट ऐसे क्रिएट होते हैं। और उसके बाद थॉट क्रिएटिविटी भी है थॉट्स की, हम कुछ नए थॉट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि क्या करूं दीदी, ये सब चीजें तो है ही ना, इसलिए शायद हम अब बदल ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आए किस लिए हैं? बदलने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं, कुछ नया विचार क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो क्रिएटिविटी हमारे ही थॉट की एक पावर है। हम जो नया सोचते हैं, जो नया सुनते हैं, हम कुछ सोच कर ही बनाते हैं। आप सोचिए, जिस थॉमस एडिसन का नाम हम सबने सुना है, जिन्होंने पहली बार इस बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने भी तो कुछ सोचा ही होगा, सोचा होगा तभी तो उस सोच को एग्जीक्यूट किया। तो क्या हम भी एक नई सोच रखकर ऐसे नेगेटिव एनवायरमेंट में पॉजिटिव नहीं रह सकते? क्या कहेंगे? रह सकते हैं ना, क्योंकि रहना किसका कमांड है? मेरा है। चॉइस किसकी है? मेरी है। रहना किसने है? मुझे है। तो मैं चाहूं जैसे भी रह सकती हूँ। क्रिएटिविटी के थॉट को भूलना मत, ये मेरी खुद की पावर है। ऐसा नहीं कि बिलीफ सिस्टम पर ही सारी दुनिया चल रही है, नहीं, जिन्होंने उस चीज को छोड़कर स्टेप आउट किया वो आज बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। और वो कोई और नहीं, वो हम में से भी हो सकते हैं, हम भी एक नया आयाम तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें मन की इन संकल्प की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद आती है दूसरी शक्ति, जिसको कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, डिसीजन लेना, किन किन बातों पर निर्णय करना, और निर्णय का मतलब क्या होता है। आप सोचिए, सारी चीजें, हमें किचन में जाते हैं, बहुत से थॉट्स आते हैं, जूस पी ले, कॉफी पी ले, चाय पी ले, पानी पी ले, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन बुद्धि डिसाइड करती है, नहीं अभी सुबह सुबह खाली पेट कॉफी, कैफीन जाएगा, रहने दो, मत पियो, ये पानी पीना अच्छा होता है। ये समझ है हमारी, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कौन हमें जजमेंट दे रही है? ये बुद्धि हमें दे रही है। मन ने तो थॉट क्रिएट करके डाल दिया, अब डिसाइड कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। तो बुद्धि का पहला काम अंडरस्टैंडिंग, समझना होता है। दूसरा, वो बिलीफ सिस्टम के अनुसार भी वो समझती है, जैसा जैसा उसने सुना होता है, बड़े बुजुर्गों ने बताया होता है, या घर के रीति रिवाजों को देखा होता है, उस मान्यता के आधार पर भी बुद्धि हमें डिसीजन देती है। फिर कुछ एनालाइज करती है, वो पहले ऐसा हुआ था, ऐसा करने से ऐसा मेरे साथ होता है या होता आया है, उस एनालाइजेशन के बेस पर भी बुद्धि हमें डिसीजन देती है, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अल्टीमेट हम फिर डिसीजन ले लेते हैं। अब डिसीजन लेने का काम बुद्धि का है, इसीलिए जब कोई काम गलत होता है तो हम बुद्धि को ही दोष देते हैं। क्या कहते हैं? पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि कहां मर गई थी, कहाँ चली गई थी, घास चरने गई थी। ये शब्द हम बुद्धि के लिए कहते हैं ना, क्योंकि मन का दोष नहीं है, मन ने तो उठाकर दे दिया सब कुछ। अब काम किसको करना है, फाइलिंग सारी किसको करनी है, आगे बुद्धि को करनी है। अच्छा, हम भगवान से मांगने क्या जाते हैं जी, हम कभी भी नहीं कहते सद दिमाग देना, कहते सद बुद्धि देना। सद दिमाग नहीं मांगते, इसका मतलब दिमाग और बुद्धि में भी अंतर है। दिमाग जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी है, ब्रेन, जिसको आजकल ट्यूमर्स वगैरह हो भी जाते हैं तो उसके ऑपरेशन भी हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जिससे विजडम तैयार होता है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। हाँ, उसको हम मेडिटेशन के थ्रू अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर, एनालाइजेशन देकर, अच्छे बिलीव सिस्टम क्रिएट करके हम एक अच्छा डिसीजन पावर उसको दिला सकते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस है, जैसे बहुत समय से हम सुनती हुई बातों के आधार पर चलते आए, अब हमें उसी अकॉर्डिंग अपने उस बिलीव सिस्टम को चेंज करते हुए, कुछ नया ऐड करते हुए अपनी मान्यताओं को नया बनाना है। कुछ भी हो जाए, मेरे को शांत रहकर अगर ये काम करके सक्सेस होना है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा वो थॉट, वो विजुलाइजेशन। और जैसे जैसे बुद्धि की आंख से मैं उस चीज को अच्छा होता हुआ देखूंगी, होता चला भी जाएगा, जिसको आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्या अर्थ है इसका, यही तो है कि मन से थॉट क्रिएट करना, बुद्धि से विजुलाइज करना। और जैसे जैसे मैं विजन कर रही हूँ, वैसे वैसे मैं उसको एक्शन में लेकर आ रही हूँ और वो रिस्पॉन्स आता है। फिर हम इसको सीक्रेट कह देते, सीक्रेट का आजकल वो निकला हुआ है, पढ़ते हैं सुनते। कहने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को धोखे में रखना, अपनी प्रोग्रामिंग करना है। ये एक्चुअली मन और बुद्धि दोनों को एक्टिव करके प्रोग्रामिंग करना है, जिससे हमारा जो डिसीजन निकलेगा वो बहुत एक्यूरेट निकलेगा, और उस आधार पर हम इस बुद्धि को यूज कर पाते हैं। नहीं तो बुद्धि है, जैसे मैंने कहा चीज है, शरीर है, लेकिन यूज नहीं कर रहे तो हम दोष दे देते, भगवान ने इसको बुद्धि देकर ही नहीं भेजा था। पहले तो यही सोचते थे ना, भगवान अलमारी खोलता है, दिमाग डालता है, ये डालता है और नीचे भेज देता है। ऐसे नहीं होता एक्चुअली, तो हम आप सिस्टम को समझते हैं ना, जितना हम जिस चीज को यूज करेंगे वो चीज उतनी एक्टिव होती चली जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है, तीसरी फैकल्टी, उसको कहते हैं संस्कार। और संस्कार को अगर मैं बहुत इजी वर्ड में कहूं, एंड दैट इज आदत, हैबिट्स। आदतें कैसे बनती हैं, उसके भी बड़े सोर्स हैं, लेकिन आदतें बनाना बिगाड़ना किसके हाथ में है, हमारे हाथ में, क्योंकि ये मेरी फैकल्टी है। मैं इसको कैसे यूज करती हूँ ये मुझे मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आदतें हमारी ओरिजिनल आदतें, मूल आदतें होती है, माना आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है, जो उसकी, जिसको कहते हैं मूल है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आप देखिए हम कितने शोर शराबे से आते हैं, आते ही हम खुद एंजॉय करने गए थे, हमने खुद डीजे वीजे चलाया, खूब शोर किया, लेकिन अल्टीमेट पार्किंग तक पहुंचते कहते हैं कितना आवाज था वहां पर, यहाँ कितनी शांति है। तो वो आवाज की चॉइस भी तो मेरी थी ना, लेकिन अल्टीमेट पसंद क्या आ रही है, जो मेरा मूल है, शांति। मूल चीज वो आत्मा के जो खुद के गुण है, वो आत्मा का मूल है, इसलिए आत्मा को उसका इंटरेस्ट आता है। तो आत्मा की मूल आदतें उसकी ओरिजिनल नेचर से मिलती है, तभी हमें शांति पसंद है, तभी हमें प्रेम पसंद है, तभी हमें आनंद पसंद है। हम सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक कर जब हम एक लेवल पर पहुंचते हैं, छत पे जाते हैं, उस छत पर कुछ भी नहीं होता, एक टंकी दिख रही होती है बस, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हाँ पहुंच गए, अच्छी बात। क्यों, हमें आह करके निकल रहा है और बड़े खुशी वाला निकल रहा है, क्योंकि वो जो मेहनत थी ना, उसने एक स्टॉप दे दिया हमको, तो हमें वहां अच्छा लग रहा है। कई जो लिफ्ट से आया होगा ना, वो कहेगा क्या है यहाँ पर देखने का, ये क्या, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन कहते चल के आओ ना, फिर पता चलेगा। मूल आदत, अल्टीमेट हम उस आनंद को महसूस करते रहते हैं। उसके बाद जो आदतें आती हैं, वो कुछ पूर्व जन्म की भी होती हैं। आजकल तो बहुत ही दिखता है, छोटे छोटे बच्चे ढाई ढाई साल के एटलस याद करके बैठे हुए हैं, गूगल बॉय अभी पीछे कहीं निकला था, है ना। आप सोचिए कैसे उसको सारा कुछ याद है, बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं, उनको सारी फॉर्मेशन मालूम है, कैसे करना है क्या, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आते हैं। हमने खुद देखा है कई बार, कई बच्चों को खिलौने देते हैं, वो खिलौने से नहीं खेलते, लेकिन वो किचन में जाएंगे चाकू उठाएंगे, वो कहीं होगा किसी मिलिट्री में या कहीं पर, कोई तो नेचर में होगा उसका पुराना इतना कड़ा संस्कार जो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जब तक वो नए संस्कार क्रिएट करे नई बॉडी से, तब तक वो पुराना उसको खींचता है और फोर्सफुली होता है। तभी कुछ संस्कार जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म से आए हुए होते हैं। इसमें हम हर संस्कारों को माता पिता पर दोष नहीं दे सकते, कुछ संस्कार पूर्व जन्म से हम आगे लेकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाते हैं जब हम प्रेजेंट में उन पर वर्क करते हैं, तो वो खत्म भी हो जाते हैं। जिसको हेरिडिटरी संस्कार नेक्स्ट कहते हैं, माना माता पिता परिवार जो भी हमारे वंश है जिससे हमको मिलता है। हमने देखा माता पिता के कुछ नेचर होती है जो बच्चों में भी दिखाई देती है, फिर कहते हैं इसके ये ना बिल्कुल दादाजी पर गया है, इसके ना दादाजी भी ऐसे ही थे। क्यों खानदानों से जोड़ देते हैं? कहीं ना कहीं वो जीन्स वर्क करते हैं जो उस आत्मा को उससे अफेक्टेड होती हैं। इसलिए खानदानी नेचर भी कुछ कह दी जाती है, नेचर से जोड़ दी जाती है। कुछ कंपनी के संस्कार होते हैं, ऐसा भी नहीं कि हाँ खानदानी बेकार है। कईयों के परिवार में बड़ी सभ्यता होती है, बड़ी संस्कृति होती है, बहुत अच्छे मैनर्स वाले बोल बोलते हैं, लेकिन बच्चा ऐसी कंपनी में जा चुका होता है, कहते हैं हमारे घर में कोई ये लैंग्वेज नहीं बोलता, पता नहीं ये कहां से सीख कर आया है। फिर क्या कहते हैं, संघ का असर, कहते संगति खराब है, आप संघ को चेक करो, इसका किसके साथ उठना बैठना है। क्यों हम पेरेंट्स जब बच्चों को एडमिशन कराने लेके जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ कौन से बच्चे आते हैं, कैसे आते हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या है, क्यों हम ये सब चीज चेक करते हैं? क्योंकि मेरे बच्चे का संघ तैयार होने जा रहा है, तो कंपनी तो मैटर करेगी ना, हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। इसलिए आदत केवल आत्मा की जिम्मेवारी नहीं है, आत्मा कहाँ कहाँ से एक्वायर कर रही है उन आदतों को, ये सब इसमें अपना अपना हिस्सेदारी निभाते हैं। और उसके बाद आती है विल पावर। देखिए हर चीज, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे संस्कार है, हर एक को एक ऑप्शन मिला हुआ है चेंज का। मन को क्रिएटिविटी का ऑप्शन मिला है कुछ नए क्रिएटिविटी के थॉट क्रिएट करने का, बुद्धि को कौन सा ऑप्शन मिला था? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम अपनी बुद्धि को कुछ और अच्छा एनालाइज करने के लिए, अच्छी चीजों को देखना सुनना प्रारंभ करें तो हम चेंज कर सकते हैं। और फिर हमें संस्कारों को विल पावर का मिला है। हम अगर विल पावर रखते हैं तो कुछ बड़ी से बड़ी चीजों को भी चेंज कर सकते हैं। विल पावर के कारण हमने देखा कितना, आपने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं कि अरुणिमा सिन्हा थी, सोचिए पैर भी कट गया लेकिन माउंट तक चली गई, कैसे? केवल एक विल पावर से। उनको ये समझ में आ गया बॉडी तो मैं चला रही हूँ, बॉडी मुझे नहीं चला रही, चाहे एक हो चाहे दो टांग हो, तो यहाँ की प्रोग्रामिंग है कि दो टांग से ही चढ़ सकती हूँ, मैं प्लास्टिक की टांग को लेकर चलूंगी। प्रोग्रामिंग चेंज करी, क्या नहीं हो गया, हो गया, करके दिखाया। तो विल पावर हमारे संस्कारों को बदलने में बहुत बहुत मदद करती है। तो ये विल पावर ही तो है हमारी, जो हम अपने आप को याद दिला रहे हैं। कोई अभी आप कल ही में किसी से, आप ही में से कोई किसी ने बोला यहाँ तो अच्छा लग रहा है, वहां जाके देखते हैं। नेचुरल है, बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन वहां जाकर भी मुझे किस चीज को मेंटेन करना है? विल पावर को मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने सीखा है ना। अब मैं यहाँ ओम शांति सीख कर आई, घर जाके बोलू आप सब शांत रहो, नहीं, शांत किसको रहना होगा? मुझे। ट्रेनिंग किसने ली है? मैंने। तो मैनेज किसको करना है? मुझे। मैं उनको कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? और अगर मैं कर रही हूँ इसका मतलब मैं तो जो एनर्जी दे रही हूँ वो दे ही गलत जगह रही हूँ। मुझे मेरे पे काम करने की जरूरत है, साधक मैं हूँ, जर्नी मेरी है, इनपुट मैंने लिया है, तो आउटपुट भी मेरे से निकलना चाहिए। अच्छा, सिचुएशंस नहीं बदलेंगी, मुझे खुद को बदलना है, लेकिन इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होनी चाहिए। जितनी विल पावर अच्छी होती जाएगी उतना मेरे कर्म में वो रिस्पॉन्स दिखता जाएगा। अब जब आदतें भी इन सब सीक्वेंस से बनती हैं, आदतों के भी अलग अलग रूप हैं, उनसे हमारे संस्कार तैयार होते हैं, तो अब मेन बात आती है कि हम आत्मा अपने साथ वापस लेकर क्या जाएंगे। आए तो हैं, लेकिन हम सभी ने एक लाइन सुनी हुई है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और ये लाइन झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। सच में हम सब खाली ही हाथ आए थे, क्योंकि ये हाथ तो हमने लिए ही यहां थे, हाथ थोड़ी ऊपर से लेकर आए थे हम आई थी सोल। लेकिन सोल के पास क्या है, अपनी तीन फैकल्टी, मन बुद्धि संस्कार। तो आज ये समझ के चलिएगा कि मैं आत्मा आई भले थी ऊपर से, सतोगुणी रूप से थी, लेकिन मेरे पास क्या ऐसी पावर है जो मुझे साथ लेके जानी भी है। मेरी खुद की जो ओरिजिनल पावर है मैं वो लेकर आई थी, आज कर्म करते करते निकल गई, आज मुझे उसे दोबारा लेकर आना है। तो सोल के जो मूल शक्तियां हैं, जो मूल आदतें हैं, वो सोल की अपनी 7 क्वालिटीज हैं। आज आपको आपकी खुद की क्वालिटी मिल रही है। सबसे पहली सोल की क्वालिटी है नॉलेज। मैं बोल रही हूं इतनी देर से, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसे ऐसे कर रहे हो? एग्री हो? एग्री कैसे हुए? क्योंकि नॉलेज है आपके पास, बात मैच हो गई, ऐसे कर दिया, नहीं हुई ऐसे कर दिया। तो ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो हम सबके पास है, सिर्फ क्या है उसको किस तरीके से मैंने यूज किया हुआ है वो हमें मालूम पड़ता है। तो ज्ञान आत्मा की सबसे पहली शक्ति है। उसके बाद प्योरिटी, पवित्रता। हम एकदम नहा धोकर आते हैं, बाहर आते हैं और हमें वही मैले कपड़े मिल जाए, हम कितने बेमन से उठाएंगे उसको। अच्छा मैले कपड़े चलिए हमें नहीं भी मिले हैं, मैं कई बार नोट करती हूँ जब तक मैंने सॉक्स या जूते या चप्पल नहीं पहने तब तक हम कैसे चलते हैं, नहाए हुए हैं बिल्कुल फ्रेश कैसे चलते हैं, हम एक एक उंगली यूज करते हैं, सारा पैर नहीं रखते आराम से, हम कहते पूरा खराब ना हो जाए क्योंकि मैं बिल्कुल अभी भी तैयार होकर आई हूँ। इसका मतलब सोचिए हमें प्योरिटी कितनी पसंद है, वो अलग बात है कि हमें प्योरिटी के लेवल्स नहीं मालूम है, हम बाहरी शुद्धि की बात करते लेकिन हमें वो पसंद है इसलिए हम उसको मेंटेन रखते हैं। तो पवित्रता भी आत्मा की क्या है, मूल नेचर है, मूल नेचर। साफ सुथरा किसको नहीं अच्छा लगता, किसको नहीं अच्छा, वो अलग बात है नहीं मिलता तो एडजस्ट कर लेते, लेकिन साफ होगा तो एकदम कहते ना वाह कितना अच्छा है यहाँ पर, इसको ध्यान से रखना। साफ चीज को रखते भी हम साफ देते हैं क्योंकि उस पवित्रता को मिल, वो मूल नेचर है मेरी प्योरिटी की, इसीलिए मुझे वो पसंद आ रही है और नेचुरली एडेप्टेबल हो जाती है हमारे अंदर। तीसरी है नेचर शांति। जैसे मैंने सुनाया हम कितने भी कैओस में या कैसे भी माहौल में हो अल्टीमेट हम अपनी पार्किंग में भी आकर शांति की महसूसता कर लेते हैं। शांति का मतलब बंद कमरे में बैठ जाना नहीं है, शांति का मतलब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर कहीं मंदिर गुरुद्वारे या पहाड़ों पे जाके बैठ जाना शांति नहीं है। शांति माना मैं अपने आप को सब जगह होते हुए भी मैं क्या हूं मैं अपने को उस मूल से जोड़ सकूं, दैट इज कॉल्ड शांति, क्योंकि वो शांति मेरा खुद की मूल नेचर है। बाहर से एनवायरमेंट क्रिएट करने से शांति मिलने वाली टेम्परेरी शांति है, लेकिन कैसा भी एनवायरमेंट है मैं अगर पीसफुल हूं दैट इज माय पीस, वो मेरी खुद की सोल की खुद की जो कमाई है वो है। उसके बाद है प्रेम, ये भी आत्मा की इननेट नेचर है। प्रेम कैसे, आप देखिए एक मॉल में हम जा रहे हैं, हम अपना सामान खरीद रहे हैं, अचानक मेरी नजर पड़ती है कि एक ट्रॉली पे एक बच्चा बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, बड़ा स्माइल कर रहा है, आप जबरदस्ती आप उसको खिलाते हो, आप ऐसे ऐसे करते हो, अच्छा आप जल्दी से अपना पर्स टटोलते हो, जेब देखते हो कुछ है तो मैं इसको चॉकलेट दे दूं, उसने नहीं मांगा आपसे, आप उसको नहीं जानते, नाम काम धाम आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन नेचुरली निकल रहा है आपके अंदर क्योंकि प्रेम आपका नेचुरल नेचर है और वो नेचर हमारा देते हैं, लेकिन हमने आज उसको मेरा अपना, मेरा बच्चा है तो इतना प्रेम करना है, दूसरे का है तो इतना, आज हमने इसको बाइफ्रिकेट कर दिया है। एक्चुअली ये मेरी इननेट नेचर है, इसलिए इसको मुझे कहीं से खरीदने या बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे याद करने की जरूरत है। और उसके बाद हैप्पीनेस, खुशी। मैं चाहूं तो सारे खुश हो रहे, जैसे मैंने कहा लाफ्टर एक हमने चैनल बना लिया उससे खुश हो जाते हैं, या क्लब ज्वाइन कर लिया वहां जाकर खुश हो जाते हैं, या एक्सरसाइज बना ली वहां खुश हो जाते हैं, तो उस दायरे में बांध लूं या मैं हर काम करते खुशी से करूं। इसीलिए कहते एक होता है खुशी के लिए काम करना, एक होता है खुशी से काम करना, विच वन इज बेटर, खुशी से काम करना, क्योंकि खुशी के लिए काम करेंगे तो फिर हम डिपेंडेंट हो गए, फिर हम एक्सपेक्टेड हो गए कहीं ना कहीं, और खुशी से काम करेंगे तो ड्यूरिंग द जर्नी आई एम एंजॉयिंग। कई लोग कहते हैं हम मनाली जा रहे हैं घूमने, आपको पता है? तो कहते अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, जाइए. कहते अभी क्या, अभी मनाली पहुंचे थोड़ी ना होंगे, तो जा तो रहे हैं ना, यहीं से ही खुशी. और कई कहते हैं क्या है, धीरे बोलो, आराम से चलो, ऐसे मत करो, वहां जाके ऐसे मत करो. वो रस्ते में लड़ रहे हैं वहां जाकर खुश होने के लिए, वहां जाकर. और बीच में अगर खुश हो गए तो मना है, वहीं जाकर करना है काम. इसका मतलब हम जर्नी एंजॉय नहीं करते. जब से हमारी बुद्धि में जो हमारा डेस्टिनेशन या लक्ष्य फिक्स होता है, हमें तभी से ही अपनी जर्नी को हैप्पीनेस में फील करना जरूरी होता है. उस हैप्पी मूड से उसको चलाना शुरू करते. इसलिए ये नहीं थे कि तीन दिन वहां जाकर खुश होंगे. जब से जा रहे हैं हम, ट्रेन में बैठे हैं हम, तब से एंजॉय कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जर्नी मेरे को याद दिला रही है. तो हैप्पीनेस भी क्या है, मुझे सिचुएशन नहीं चाहिए, मैं खुद वो खुशनुमा आत्मा हूं. तो ये मेरी खुद की नेचर है. और उसके बाद कहते हैं आनंद. बड़ा अच्छा सीक्वेंस है. आनंद मना एकदम ऐसा सोचिए, ब्लेस है वो, और ब्लेस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं. जितना हम आनंद में रहते हैं ना, उतना परमानंद मिलता है. इसीलिए कहते हैं ये एक सीक्वेंस है हमारा. इस सीक्वेंस को जितना हम अच्छे से समझेंगे, तब हम अपने आप को पावरफुल बना सकेंगे. और पावर भी क्या है, मेरी ही इननेट नेचर है. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी. मान लीजिए मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन नौकर आज छुट्टी पर है, ठीक है. और एक टेबल है जो बहुत टूटी फूटी सी सामने पड़ी हुई है, और मैं कब से इनको कह रही थी हटा लो, नहीं हटाया. और आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली है, घर में किटी पार्टी होने वाली है, ठीक है. टेबल बहुत भारी है. मैंने अपने हस्बैंड को बोला, भाई इस टेबल को प्लीज हटा दो, आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली है. उन्होंने कहा पक्का, बिल्कुल अभी हटा दूंगा मैं, तू निश्चिंत रह, और खाना तो बाहर से मंगा लेना. मैंने सारी प्रोग्रामिंग कर ली अपना. अच्छा, अब हस्बैंड जल्दी जल्दी में चले गए और टेबल वहीं रह गए. अब टेबल है भारी, काम किसका था, नौकर का, नहीं किया. सेकंड ऑप्शन हस्बैंड का, नहीं किया. अब मेरी फ्रेंड्स आ रही है, वो टेबल उठ जाएगी मेरे से, नहीं उठ जाएगी या नहीं उठ जाएगी, उठेगी ना. क्यों उठेगी? क्योंकि मुझे मालूम है मेरी फ्रेंड्स आ रही है, मुझे मालूम है मेरी रेपुटेशन ये टेबल डाउन कर देगी. तो पावर कहां से आई, टेबल से आई या किससे आई? मेरी थॉट से आई है. इसका मतलब शक्ति मेरे पास है. ये कॉस्ट्यूम डिजाइन जो कर रखा है ना हमने, ये मेरा काम नहीं, ये जेंट्स का काम है. हमने खुद ही बोल रखा है. नहीं तो आज आप देखिए हर फील्ड में, इवन प्रेसिडेंट तक भी बहनें बन गई हैं, हर फील्ड में. तो ये कॉस्ट्यूम है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये नहीं, हम कोमल हैं, ये तो हार्ड काम इन लोगों के हैं, ये हमने डिजाइन किया हुआ है. एक्चुअली पावर सोल में है, थॉट में है. हाँ ठीक है, शरीर के अनुसार उस कोमलता को ध्यान देना या जो शरीर की सॉफ्टनेस है उसको समझना गलत नहीं है. वो ऐसा भी नहीं कि हम सब कुछ कर सकते तो कहीं भी कुछ करने पहुंच जाए, लेकिन एक मर्यादा है शरीर की वो. लेकिन उस पर डिपेंड रह जाना और ये सोचना कि ये पावर है ही नहीं मेरे पास, ये भगवान ने उनको दी मुझे नहीं दी, तो ऐसा नहीं होता है. थॉट से हम सारे काम कर सकते हैं. हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं वो पावर मेरे पास अपने आप जनरेट हो जाती है. तो ये सातों शक्तियां आत्मा को सतोगुणी बनाती हैं. ये सातों शक्तियां हमें बाहर से नहीं मिलने वाली है, ये मेरी अपनी शक्ति है. सिर्फ इसको मुझे रोज 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 एलिवेटेड थॉट के रूप में लेना है. हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका आपको तो 3 डेज में एक तरह से दिया जा रहा है, जो भी मुख्य मुख्य है. लेकिन बेसिकली जो कोर्स होता है वो 7 डेज कोर्स होता है. 7 डेज कोर्स का मतलब ही है 7 दिन का पाठ्यक्रम, जो पूरा एक शिक्षा प्रणाली है, जिसमें सोल, सोल की जर्नी, सुप्रीम सोल, मेडिटेशन, फिर कैसे कैसे हम इसको चेंज करें, वर्ल्ड वाइड कैसे चेंज है, ये पूरा सिस्टम बताया जाता है. और इन 7 दिनों में ये 7 गुण एज अ एलिवेटेड थॉट हम होमवर्क लेते हैं. तो आप रोज ले सकते हैं, भले 3 दिन के लिए है, लेकिन रोज भी हम, आज मुझे क्या करना है, आज मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, आज मुझे जहां से भी हो ज्ञान को पिक करना है, ज्ञानी बनकर समझना, अंडरस्टेबल रहना है मुझे, किसी बात पे तुरंत रिएक्ट नहीं करना. ज्ञानी तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो समझता है पहले वो ये क्यों बोल रहा है, इसका क्या बोलने का तरीका. तो ज्ञान स्वरूप हूं माना ये नहीं सिर्फ मुझे रटना है, मंत्र की तरह मुझे अपने आप को ये बार बार इन्फॉर्मेशन देनी है और उस अनुसार रिएक्टिव या रिस्पॉन्सिव होना है मुझे। ऐसे ही मैं प्रेम स्वरूप हूं ये समझकर मुझे अपने को थॉट देना है कि आज मुझे सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूं। सामने वाला है या नहीं है वो उसकी चॉइस, लेकिन मेरा थॉट मेरे प्रति मुझे अपने आप को अवेयरनेस में रखना है। तो ये रोज के हम 7 दिन ये थॉट रखेंगे तो हमारे अंदर वो सतोगुणी जो मूल आत्मा के संस्कार है ना, वो एक्टिवेट होने शुरू होते हैं। और पूरे आप अगर पूरा वीकली भी देखें तो होते भी दिन कितने हैं, टोटल 7 ही होते हैं, 8वां तो दिन होता भी नहीं है, है ना, उसके बाद फिर से पहला ही आ जाता है। तो इसका मतलब वीकली हम अगर एक एक थॉट को उस पर काम करेंगे तो हमारी सोल अपनी उस एनर्जी को एनहांस कर पाएगी, अपनी एक्टिविटी को समझ पाएगी, अपने आप को कर्म में कैसे मिंगल अप करना है इस गुणों के आधार पर वो चेंज अपने जीवन में देख पाएगी। इसलिए सतोगुणी आत्मा को मेडिटेशन के लिए ये 7 गुण बहुत बहुत मदद करते हैं, और इस आधार पर हम अपने आप को मेडिटेशन में बिठाते हैं, विजुलाइजेशन देते हैं, और उस विजुलाइजेशन के बेस पर हम अपने अंदर एक एक गुण को लेकर आते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन जब करेंगे तो आज भी एक थॉट लेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर थॉट है, प्रेम नेचुरल गुण है, अपने आप एक दूसरे के प्रति क्रिएट हो ही जाता है। तो आज सारा दिन हम सबसे जिससे भी बोलेंगे मिलेंगे, यहाँ तो कोई ऐसा है भी नहीं जिस पर आपको गुस्सा आ जाए या घृणा आ जाए, लेकिन अच्छा है ऐसे कंफर्ट जोन में तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी आगे के लिए हो जाएगी। घर में ही बच्चे को पढ़ाते रहते तो स्कूल में जाकर वो कहते मैम मैं बताऊं, क्योंकि घर में वो अच्छा तैयारी करके आया होता है। तो ये हमारा घर है, हम अच्छी तैयारी करके यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आराम से बैठिए, सीधे होकर बैठना जरूरी है। याद रखिएगा ये हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं इन हाथों में एनर्जी होती है, थॉट के थ्रू हम इन अपने इंद्रियों से एनर्जी को लेते भी हैं, सर्कुलेट भी करते। तो इसको ऐसे करके बैठिएगा तो एक चैनलाइज हो जाएगी मेरी बॉडी, जो मैं थॉट कर रही हूँ वो एक सर्कुलेशन मोड पर रहेगा और मेरी एनर्जी मेरे पास ही रहेगी और धीरे 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 वो सर्कुलेट होती पूरी बॉडी को पावरफुल करेगी। तो मैं आपको कनेक्ट करूंगी कुछ कमेंट्री के थ्रू, जैसे आपने सुबह अमृत वेले में भी किया होगा। आपको सिर्फ बुद्धि के द्वारा मन से थॉट को लेना है, बुद्धि की आंख से विजुलाइज करते रहना, कुछ नहीं होता, सोल नहीं दिखे, दिखने की चीज है भी नहीं वो। ज्यादा प्रेशर मत लेना, नहीं तो आप कहेंगे सिर दर्द हो गया मेरा, मैं बिंदु देखने में लगी रह गई, तो वो मत देखिएगा कुछ भी। बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन लेनी है और दिख जाए ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूं क्रिएट करने की, और मेरी विल पावर रहेगी तो मैं उसको कर्म में भी ला सकूंगी। चलिए आपकी चॉइस है, आप आईज क्लोज करना चाहें नहीं तो ओपन भी रख सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सारी पॉजिटिविटी को इस सेशन को इनहेल करके एक्सहेल करिए सारी नेगेटिविटी, और अपना सारा ध्यान शरीर के सबसे ऊपरी भाग मस्तक के बीच में एक छोटा सा सितारा बहुत ही प्यारा, कोई और नहीं ये मैं हूं, मैं सितारा इस शरीर का मालिक, एक एक इंद्रियों को चलाने वाला, मैं इस शरीर की अधिकारी आत्मा हूं। अपने आप को आज मैं आत्मा खुद के बारे में जानकर, खुद की तीनों शक्तियों से मिली, मेरी मन रूपी शक्ति श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करती है। हे मन, तुम कितने अच्छे हो। मेरे लिए श्रेष्ठ विचार क्रिएट करने वाले तुम मेरे साथी हो। आज से जब जब समय मिले, मेरे प्यारे मन, श्रेष्ठ विचार ही क्रिएट करना। आज मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं इस विचार को क्रिएट किया है। हे मेरे मन, आज सारा दिन इस विचार में मेरे साथ रहना। अपनी दूसरी शक्ति से मिलते हैं, बुद्धि रूपी शक्ति जो मुझे प्रेम स्वरूप बनाने में सदा मेरे साथ रहेगी। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति लेकिन मेरी बुद्धि मुझे सही निर्णय दिलाकर मेरे प्रेम स्वरूप को मेंटेन रखेगी। आज दिन तक जो भी निर्णय हुआ, हे बुद्धि, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। चलो आज से हम तुम दोस्त बने। तुम मुझे मेरे अनुसार अच्छे विचार धारण करने में मदद करती रहना। क्योंकि तुम्ही से मेरी नए संस्कार की शुरुआत होगी। आइए अपने तीसरे मित्र से मिलें। मेरी विल पावर जो मेरे इस थॉट को सारा दिन मेरे साथ रहकर हर कर्म में दर्शाएगी। मेरे संस्कार मेरे जीवन में एक नई दिशा लाने वाले हैं। ये मेरी विल पावर हर कर्म में मेरे साथ शक्ति बनकर मुझे एक सफलता के शिखर पर जाने के लिए मददगार बनेंगी। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा अपनी इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आज सारा दिन सबके संपर्क में आते प्रेम की ही वाइब्रेशन फैलाऊंगी। ये अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए। अपने दोनों हाथ सामने लाइए, हाथों की लकीरों को देखिए इन हाथों में कर्म करने की भाग्य की रेखा है। मुझ आत्मा ने अपनी ही शक्तियों से ये सुंदर भाग्य रचा है। आज इस प्रेम स्वरूप आत्मा ने बड़े प्रेम से अपने भाग्य की रेखा देखी और मन ही मन में संकल्प कर लिया, इन हाथों में मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, इन हाथों से जो कर्म होगा प्रेम पूर्वक होगा। आज से मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं, भाग्य मेरा है, कर्म मेरा है, मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो मेरा भाग्य भी सदा मुझे सफलता दिलाएगा। आज तक ये हाथ सबको दिखाए, आज से मैं खुद अपना भाग्य देखूंगी। दोनों हाथों को अच्छे से मसल कर अपने सिर पर रखकर खुद को तथास्तु कर दीजिए, क्योंकि हम ही अपने क्रिएटर हैं, हम ही अपने आप का भाग्य रचने वाले। आंखों पे भी लगा लीजिए, पूरे फेस पे लगाकर रिलैक्स हो जाए। ओम शांति। क्योंकि ये जरूरी है, कॉस्ट्यूम जब चेंज होता है आत्मा में कुछ पास्ट मेमोरी प्रोपोर्शनल तो रहती है, लेकिन अगर उसको पिछला याद रहेगा तो वो नया जो नए संबंध में जाती है तो उसके साथ मिंगल नहीं कर पाती। पिछले के साथ, मान लीजिए वो वहां पर पुरुष थी या स्त्री थे या जो भी थी, अब वो एक नए चोले में आई है, उस चोले के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार उसको एक नई जर्नी करनी है, तो जरूर है सिस्टम थोड़े से चेंज होंगे। सिस्टम चेंज होंगे तो सेटिंग चेंज होगी। करना आत्मा नहीं है, सो ये एक रिकॉर्डिंग है सोल की अपनी, जो उसको कर्म में आना ही पड़ता है। हम प्योर करके ऊपर ले तो जा रहे हैं उसको, लेकिन क्योंकि ये एक चैनल है, आवागमन का चक्र जिसको कहते हैं, तो आत्मा जाती है जो प्योर करके गई, फिर आती है उस प्योरिटी को बिखेरने। आप सोचिए, सारी प्योर सोल्स अगर ऊपर चली जाएं तो नीचे तो क्या रह जाएगा, इसलिए वो इम्प्योरिटी रह जाएगी ना, इसलिए ऊपर जाती हैं, फिर वो आती हैं अपनी नेचर से प्योरिटी को और औरों को स्प्रेड करने के लिए। तो ये आना जाने का चक्र जिसको आवागमन कहते हैं, और हम सब के अंदर एक इटर्नल रिकॉर्डिंग है। जैसे ग्रेविटेशन पावर होती है ना, हम किसी चीज को ऊपर भेजते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे आती है, नीचे लाने की कोई मेहनत नहीं होती। इसी तरह से हम सब सोल की भी अपनी जर्नी है, जिसको पवित्र होकर ऊपर जाना है, फिर अपने टाइम पर नीचे आना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। एक बार एक आपने देखा होगा, गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, उनका एक कॉमन पार्क होता है। उस कॉमन पार्क में बच्चे आते हैं, खेलते हैं, सभी बिल्डिंग के पेरेंट्स भी आते हैं, मम्मी अलग बैठी होती है, सब होता है। तो एक मदर और एक बच्चा सेवेंथ फ्लोर पर रहते थे। विजुलाइज कीजिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको। कॉमन पार्क में सब बच्चे खेल रहे हैं, मदर बच्चा, क्योंकि बच्चा छोटा है, 5-6 साल का है, तो वो अपनी माँ के साथ ही बैठा है। लेकिन वो नीचे रोज आवाजें सुनता था, ओए जीत गए, कैच हो गया, आउट हो गया। तो उसको कुछ क्रियोसिटी होती थी कि समथिंग इज गोइंग हैपनिंग गुड नीचे, लेकिन मम्मी मुझे नीचे नहीं जाने देती बिकॉज मैं छोटा हूं शायद। तो एक दिन वो अपनी माँ से हिम्मत करके रिक्वेस्ट करता है, मम्मा मैं भी नीचे जाऊं, मैं भी खेलूं। तो उसकी मदर क्या कहती है, ना बच्चे नीचे मत जाना, नीचे बच्चे बेकार है, वो बॉल भी मार देंगे, चोट भी लग जाएगी, आपको ऐसा हो जाएगा, और गेम में भी चीटिंग करते हैं, तो नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो बेटा कहता है ठीक है मम्मा, वो ऊपर ही बैठा है आराम से, क्योंकि बच्चा प्योर है, प्योर हार्टेड है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। 2-3 दिन होते फिर वो कहता, नीचे से आवाजें आ रहे, ओए जीत गए आज हम, ये हो गया। तो फिर कहता है मम्मा मैं ना ध्यान रखूंगा, कोई मारेगा तो रोऊंगा नहीं, मैं उनके बीच में जाऊंगा नहीं, कोई चीटिंग करेगा तो मैं रोऊंगा नहीं, आप प्लीज मुझे भेज दो। एक माँ का मन तो माँ का ही होता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, भेजेंगे, आप भेजेंगे उसको अच्छे से समझाकर तैयार करके, हिलना मत, ऐसे बैठना, भेज दिया आपने। अब वो बच्चा नीचे गया, नेचुरली बच्चा है, वो गेंद को आता देखता है, पहुंच जाता है बीच में और गौरक की बॉल लग जाती है उसको, उतनी भारी होती है वो। अब एकदम चोट लगती है, क्या करता है, आई मम्मी, चिल्लाता है। वहां पहुंचती आवाज माँ तक, माँ आती है वहां से, बोला था ना मैंने तेरे को, क्या बोला था, नीचे चीटिंग करते हैं, बॉल भी लगती है, चोट भी लगती है, मत जा नीचे, तूने करी ना शैतानी, फिर किया ना, तो क्या बोलता है माँ, अच्छा मम्मा आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा मम्मी गोद में ले जाती है ऊपर उसको, उसको मरम पट्टी करती है, ठीक करती है, सो जाता है दूध वूध पीकर जो भी। नेक्स्ट डे फिर आता है, नेक्स्ट डे फिर आता है, फिर शाम को बच्चे सारे पहुंचते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके चोट ठीक हो चुकी होती है, फिर बच्चा क्या कहता है, क्या कहता है, अब मैं एक्सपीरियंस हो गया हूं, अब आप मुझे भेज दो, बोलेगा ना। कुछ ऐसा ही नेचर हमारी सोल का होता है, हमारी सोल का, ये तो एक इंसिडेंट बता रही हूं मैं, हमारी सोल में भी कर्म की रिकॉर्डिंग है और अविनाशी है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग किसी ने फीड नहीं करी है, हमने एक्ट करके रिकॉर्ड करी हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग अपने टाइम पर हमें नीचे बुलाती ही बुलाती है, हमें जन्म पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है। फिर आने के अनुसार जो जो हम कर्म करते हैं, कुछ हम पुराने बेस पर करते, कुछ हम नया चेंज लेकर आते हैं, लेकिन ये चक्र में आत्मा क्योंकि अविनाशी कैसेट है, तो चार नंबर पर जो गीत होगा वो बजेगा ही बजेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ये अविनाशी रूप है। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन इसमें ये मैं एक करेक्ट करूंगी, एक्चुअली ये 7 दिन का कोर्स है, मैंने आपको सिर्फ 1 दिन की चीज बताई है, हर चीज कनेक्टेड है, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, डेथ होते ही हम ऊपर नहीं जाते, क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं इस वर्ल्ड स्टेज पर, हम सब एक्टर्स हैं, एक्टर का एक एक्टिंग होती है, कट ब्रेक होते ही वो घर नहीं जाता, वो ड्रेसिंग रूम में जाता है, वैनिटी वैन में जाता है, वो दूसरी साड़ी दूसरा ड्रेस चेंज करता है दूसरे शॉट के लिए, फिर आता है। इसी तरह हम सोल्स भी जब डेथ होती हैं, तो दो चीजें चेंज करती हैं, ड्रेस एंड एड्रेस, ऊपर नहीं जाते हम, सिर्फ ड्रेस और एड्रेस बदलकर हम एक दूसरे होम में जाते हैं, जन्म लेते हैं, फिर वहां अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जिनके साथ हमारा जो कर्म का लेखा लिखा है। नहीं नहीं, मोक्ष में नहीं जाती है, क्योंकि आत्मा एक अविनाशी अस्तित्व है, और अगर वो मिल गई ओशन में, समा गई, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे हमने कुछ, जैसे कल भी कई बता सुसाइड केसेस बता रहे थे, है? अब सुसाइड का मतलब आपका टाइम नहीं आया, लेकिन आपने अपनी बॉडी को रिमूव, आपने कॉस्ट्यूम उतार दिया, अपना नया कॉस्ट्यूम तैयार नहीं है, तो ऐसे में तो आपको भटकना पड़ेगा ना। हाँ होता है ऐसा, क्यों नहीं होता जी, अकाल मृत्यु भी होती है। हाँ जी जी, कैरी फॉरवर्ड करते हैं जी जी, पता करेंगे तो सारा सिस्टम ही सेट खराब हो जाएगा ना। लेकिन अगर अच्छा मिलता है तो भी तो हम नहीं चाहते पता कर रहे हैं, जब अच्छा मिलता है तब तो हम नहीं कहते मुझे पता तो चले ये मुझे इतनी बड़ी लॉटरी ऐसे कैसे मिल गई, ये बुरे में ही क्यों करते हैं, इट्स अ सिस्टम, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। कर्म कैरी, इस कर्म का भी फ्रूट कैरी कर रहे हैं हम, कर्म नहीं हो रहा उसका जो रिजल्ट है वो हम कैरी कर रहे हैं ना, पता इसलिए नहीं है, मैं यही बता रही हूँ, इट्स अ सिस्टम, क्योंकि अगर हमें पता पड़ेगा तो हम प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे, इसलिए कुछ चीजें हैं जो हम एक सेटिस्फेक्शन मिलती है हमको, चलो मेरा किया होगा जो मेरे सामने आया है, बट उससे मैंने एक लेसन ले लिया कि चलो इस कारण से मुझे ये आया, अब मैं ये ना करूं। अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसी व्यक्ति के पास जाके, उसको तो पता नहीं है ना कि आप पिछले जन्म वाले थे, आपका तो रूप भी चेंज हो गया, तो डिस्टर्बेंस हो सकती है। सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन हम उसको जितना जितना समझते जाएंगे ना और एक्सेप्ट करके आगे एड ऑन करेंगे, तब हम एंजॉय करेंगे इसको, नहीं तो हम, अगर मालूम पड़ जाएगा ना तो हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकते, प्रेजेंट अपने आप में एक प्रेजेंट है, गिफ्ट है, और पास्ट तो वैसे भी कहते हैं मिस्ट्री है लीजिए और यही विल पावर बार 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 के थॉट, क्योंकि संस्कार बनते ही कब है, एक कर्म को बार बार करने से संस्कार बनते हैं। तो बार बार की प्रैक्टिस, आज क्यों हम कह रहे हैं 35 साल हो गए इनको, 20 साल हो गए, भाव ही यही है कि प्रैक्टिस, आज भी हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस, और जितना हम करते रहेंगे उतना वो पावर आ जाएगी, ओवरकम कर। हाँ, फिर उसके बाद ये चीज बॉदर ही नहीं करेगी। आज हमसे कोई पूछता है आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, गुस्से वाले आते हैं लेकिन हमको गुस्सा करना नहीं है, वो हमारी चॉइस है। तो वो हम समझ गए, करते करते इतने समय से अभ्यास हो गया, खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए जी, चलिए आपका टाइम हो गया। हाँ जी, मालूम कैसे पड़ा कि हम आत्मा हैं? आप सोचिए, जीवात्मा शब्द जो बना ना, उससे हम ये महसूस करते। मनुष्य नहीं बनाए, नहीं, आत्मा की जर्नी है। हम किसी और जीवन में है या नहीं है, ये भी चैप्टर है, पूरा पूरा लंबा एक घंटे का चैप्टर है कि आप मनुष्य ही थे या उससे पहले क्या थे। आत्मा, आप इसको आत्मा कह दो, जान कह दो, प्राण कह दो, शक्ति कह दो, कुछ भी कह दो, एक स्पिरिचुअल नेम आत्मा है। हाँ, बाकी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हम पावर भी कह देते, कोई प्राण कह देते हैं। चलिए, मुझे इशारा आ रहा है पीछे से कि वाइंड अप करिए। ओम शांति।